फिर इसके बाद अब देखिए अगला टॉपिक जो है वो बहुत सेंसिटिव है, और वो क्या है कि कर्ज की अदायगी नहीं कर पाए, इससे कैसे अखलाकी तौर पर रोका जाए। यानी अपने लफ्ज़ों में इसको समझ लीजिए कि कोई कर्ज ले लेता है फिर नहीं दे, तो एथिकली कह लीजिए ये अखलाकी तौर पर ये कैसा अमल है। फिर अगला स्टेप हम देखेंगे कानूनी तौर पर क्या हम उसको जेल में डलवा सकते हैं, कैद दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि मसाइल पड़े हैं ना, तो हमें हर एंगल से इसका पता होना चाहिए। तो इस्लामी शरीयत में वुस्सत के बावजूद कर्ज के बर वक्त अदा ना करने को संगीन बुराई करार दिया गया और शिद्दत के साथ इसे रोका गया। यहाँ हम तीन डिफरेंट टॉपिक्स के अंडर बात करेंगे। पहली की एक अदम अदायगी और इसमें ताखीर, दोनों जुल्म है। कुरान और सुन्नत को वाज़ेह किया गया कि इस्तेतात यानी कुदरत रखने के बावजूद कर्ज अदा ना करना या इसकी अदायगी में ताखीर करना जुल्म है। तो पहली बात नोट कीजिए कि अदा कर सकते हैं और अभी नहीं कर रहे कि नहीं, जरा लंबी किस्तें ले लेते हैं, ताखीर होगी ना, तो ये जुल्म है। किस पे? जिससे आपने लिया है उसके लिए। आप उस पैसे से फायदा उठा रहे हैं, अगले का बेचारे का नुकसान हो रहा है। आप कहते पैसा दे दो, 10 लाख दे दो, दे दिया। आप 10 लाख को कारोबार में लगा कर हर महीने उससे 1 लाख कमा रहे हैं, मिसाल है, तो जिसका 10 लाख तो उसको तो कुछ नहीं मिल रहा, तो ये जुल्म होगा। आप मजबूरी में लें तो मजबूरी, फिर उसको ऐसो नमाज वापस कीजिए। दलील है कुरान पाक में सूरह बकरा आयत 279, वइन तुबतुम फलकुम रुऊसुम वालिकुम ला तज़लिमून वला तुज़लमून। फिर अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारी असल रकम तुम्हारी होगी, ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। आपको ये आयत किस हुक्म के बाद आई है? आयत रिबा के बाद, यानी सूद से तौबा कर लो तो असल मनी ले लो, ये नहीं कि आप कैपिटल भी डबो दो और बिल्कुल ही तुम्हारे पास कुछ ना रहे। इसके ऊपर इमाम अली कियालहर इस आयत की तफसीर में कहते हैं, यह आयत इस बात की दलील है कि मकरूज इस्तेतात के बावजूद अदा ना करने की सूरत में जालिम करार पाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया जिसके मानी है कि सो तुम्हारे असल माल तुम्हारे होंगे। इसमें कर्ज खाकी को असल रकम वापसी के मुतालबे का हक दिया गया है, और जब इसको तकाजा करने का हक है तो लामहल्ला मकरूज पर इस रकम की वापसी लाजिम होगी। तो क्या पता चला कि वापस करने की नीयत रखनी चाहिए। फिर अल्लाह ने फरमाया न तुम जुल्म करो और न तुम पर जुल्म किया जाए। इस बात से क्या पता चलता है कि मकरूज रकम अदा ना करने से जालिम करार पाता है, ठीक है ना, जुल्म हो गया ना दूसरे पे, चीज उसकी है, फायदा आप उठा रहे। जैसा कि कर्ज को असल रकम से ज्यादा का तकाजा करने पर जालिम है, देखिए जिस कर्ज दिया है वो अपने दिए हुए से ज्यादा मांगेगा तो जुल्म होगा ना, किस पे? जिसने लिया है। तो जिसने लिया है वो दे भी सकता है फिर भी नहीं दे रहा, तो किस पे जुल्म हुआ? जिसकी, तभी तो फिर लोग देते नहीं। लोग कहते हैं आजकल कौन लेके वापस करता है, लोग बैंकों में रखवाई रखते हैं, बैंक जो मर्जी कमा रहे हैं खा रहे हैं, आपको 2-4% दे के खुश कर दें, वो आप मुतमईन है। वजह क्या कि उम्मीद है अपनों को, लोग क्यों नहीं दे पाते, नहीं वापस नहीं करेंगे। अगर हम एक ऐसी एजुकेटेड सोसाइटी बनाएं, मैं खुद यकीन से कह सकती हूँ, अगर ये यकीन हो ना लोगों को कि जो दे रहे हैं वो वापस मिलेगा, तो हमारे खानदान सब गरीब रिश्तेदार जो बेचारे हैंड टू माउथ है उन सबको अच्छे बिजनेसेस मिल सकते हैं। आप भी उनको अपना 1 साल बाद वापस ले लीजिए, नीयत अच्छी होगी तो डूबेगा भी नहीं, डूब भी उनका ही जाता है जिनकी नीयत ठीक नहीं होती, प्लानिंग ठीक नहीं होती। तो बहरहाल ये टॉपिक बहुत कॉमन करने की जरूरत है। मुझे लगता है इसकी ऑडियोज को पाकिस्तान और ऐसे मुल्कों में जहां गवर्नमेंट नहीं मनवाती, यहां तो मैं गवर्नमेंट मनवा लेती है ना, किसी की भी डॉक्यूमेंटेशन है तो उसके ऊपर आप जरा अगेंस्ट जाएंगे, उनको पता है ये पुलिस को ले आएंगे। हमारे मुल्कों में आप घर किराए पे देके भूल जाए, मिलेगा देंगे तो मिलेगा, नहीं मिलता कभी भी 4-4, 5-5 साल गुजर जाते हैं। तो लिहाजा इस टॉपिक को ज्यादा जरूरत अपने मुल्कों में कॉमन करने की। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्तेतात के बावजूद कर्ज की अदायगी को जुल्म करार दिया। इमाम बुखारी ने हजरत अबू हुरैरा के हवाले से ये रिवायत नकल और बयान किया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मालदार की तरफ से अदायगी कर्ज में टाल मटोल जुल्म है। टाल मटोल क्या आता है? आज देते हैं कल देते हैं, लारे लगाना, और क्या कहते हैं इसको, डिंग टैक्टिस, बिल्कुल। हाफिज इब्ने हजर ने हदीस शरीफ की शरह में लिखा और मानी यह कि जिसके बरक्स दौलतमंद के लिए कर्ज की अदायगी के वाजिब होने के बाद टाल मटोल करना हराम है, चला कि टाल मटोल नहीं करना चाहिए। अब आप नहीं देना चाहते तो आपका क्या ख्याल है कि आपने वो पैसे बचाए, उसमें किसी से लिए थे? नहीं, कर्ज की वापसी में बदनीयती पर अल्लाह ताला उसको बर्बाद कर देता है। ये नोट करें, ये हमारे मुल्कों के कारोबारी हजरात को बताने की जरूरत है। आप कहते हैं कर्ज लिया था, दें कैसे, हमारा तो डूब गया। ये शायद कभी कभी अल्लाह भी डूब देते हैं। क्यों डुबो देते हैं? कि उसने नीयत कर ली थी मैंने कौन सा देना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हड़प करने के इरादे से लोगों का माल लेने वाले के बारे में ये वईद सुनाई कि अल्लाह ताला इसको बर्बाद कर देते हैं। इमाम बुखारी ने हजरत अबू हुरैरा के हवाले से नकल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया جو لوگ لوگوں کے مالوں کو برباد کرنے کی غرض سے لے تو اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیتے ہیں. کیا مسئلہ؟ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس کے بارے میں, اس کا ظاہری معنی یہ کہ اس کے لیے یہ بادی دنیا ہی میں اس کی معیشت یا جان میں ہوگی, یعنی یا تو اکنامیکلی گر جائے گا یا پھر ماری آ جائے گی جسم پہ. اور یہ بات مشاہدے سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی نشانیوں میں نشانی ہے. یہ بھی کہا گیا کہ بربادی سے مراد عذاب آخرت ہے, دنیا میں بھی جاتا ہے. مجھے تو پورا کہ جو کسی کا دینا نہیں چاہتا پھر اس کا دنیا میں بھی نہیں رہتا. اچھا, یہ تو اگلا ٹاپک ہے کہ عدم ادائیگی کے آخرت میں کیا نتائج ہوں گے. تو سنگین اثرات ہوں گے. اللہ کے نبی قرض کے واپس نہ کرنے کے آخرت میں سنگین نتائج بیان کر کے امت کو قرض کی ادائیگی کی رغبت دلائی. یہاں ہم چار ڈفرینٹ ٹاپک کو دیکھیں گے احادیث کی روشنی میں. نمبر ایک, اب یہ اس کو بلکہ آپ ایک الگ بنا سکتے ہیں, یہ چھوٹی سے جو نوٹس ہیں اس کو لے کر آپ ایک چھوٹا سا کلپ بنا لیجئے. پہلا ہوگا کہ قیامت کے روز ایسا شخص چور بن کر پیش کیا جائے گا. روز قیامت بطور چور, امام طبرانی نے میمون قردی سے یہ روایت کی کہ ان کے باپ نے نقل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے اس ارادے سے قرض طلب کیا کہ حقدار کا حق واپس نہیں کرنا, پھر اس نے دغے سے اس کا مال لے لیا اور قرض ادا کیے بغیر فوت ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ سے چور کی حیثیت میں ملے گا. پیچھے آپ کو بتایا تھا نا, حق مہر باندھے بیوی کا لیکن نیت یہ رکھے کہ دینا نہیں ہے, تو اس کے لیے بھی وعید ہے کہ قیامت کے دن وہ مجرم ہوگا. اور اسی طرح سے قرض لینا لیکن دینے کی نیت نہ ہونا قیامت کے دن چوری کی حیثیت میں. دوسرا نقصان آخرت میں کیا ہوگا کسی کو پیسے واپس نہ کرنے کا, کہ اپنی نیکیوں سے محرومی ہوگی. امام ابن ماجہ ابن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, مم ما توالی ہی دینار او درہم قدی من حسناتی ہی لئی سسم دینار ولا درہم, جو شخص فوت ہوا اور اس کے ذمہ دینار یا درہم ہوں تو اس کی نیکیوں میں سے بدلہ دیا جائے گا, وہاں روز قیامت کوئی دینار یا درہم نہیں ہوگا. دنیا میں کیا کرتے ہیں بھلا, کسی نے قرض لیا ہوا ہے اور وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا تو پھر کیا کرتے ہیں, پراپرٹی اس کی لیتے ہیں نا, کرک کرنا جس کو بولتے ہیں اردو میں. بینکرپسی بھی کیا ہوتی, گھر لے لیا, اس کی گاڑی لے لی, اس کے ایسٹس لے لیے. تو قیامت کے دن ہمارے ایسٹس کیا ہوں گے, ہمارے ڈیڈز ہوں گے. تو پھر جائے گا, چاہتے ہیں ہم لوگ ہماری تہجدیں چلی جائیں اور ہمارا مشکل سے دین سیکھنا چلا. کتنی محنت کرتا ہے بندہ اپنے نفس کو مار کے دین کا کوئی کام کرتا ہے, کوئی نیکی کا کام کرتا ہے, پتہ چلا وہ چلی گئی. اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو. یعنی ایک بہت ہی خطرناک بات کیا ہے کہ شہادت کے باوجود پھر قرض معاف نہیں ہوتا. امام مسلم نے ابو قتادہ سے یہ روایت نقل کی کہ اللہ کے نبی نے ان کے روبرو کھڑے ہو کر, یعنی ان کے آمنے سامنے کھڑے ہو کر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانا سب اعمال میں سے اعلیٰ اعمال ہے. یہ سن کر ایک شخص اٹھا اور عرض کیا, اللہ کے نبی آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں تو کیا مجھ سے میری خطائیں دور ہو جائیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا, نام ہاں, اگر تم اس حالت میں اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے کہ تم صبر کرنے والے, ثواب طلب کرنے والے, پیش قدمی کرنے والے اور پشت پھیر کر بھاگنے والے نہ تھے. پھر رسول اللہ نے فرمایا, کئی فقلتا, تم نے کیسے کہا؟ انہوں نے عرض کیا, آپ اس بارے میں کیا فرما, یعنی آپ نے ایک دفعہ تو اس کو جواب دے دیا کہ ہاں ایسا ہوگا, لیکن پھر کہا کیا کہا آپ نے؟ تو کہا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میری خطائیں مجھ سے دور کی جائیں گی, یعنی کیا شہادت گناہوں کی معافی بنے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نام ون تصابر محتسب, ہاں اور تم صبر کرنے والے, اجر طلب کرنے والے, پیش قدمی کرنے والے ہوئے تو مگر قرض. دیکھیے حدیث کے اندر لفظ دیکھ لیجیے, علت دین, اس کو ہائی لائٹ کر لے صرف اتنے لفظ کو. یہ جو ہائی لائٹڈ لفظ ہوتے ہیں نا, یہ نظروں میں گھومتے ہیں, علت دین, قرض نہیں معاف ہوگا. اور کہا کیونکہ جبرائیل نے ابھی مجھ سے یہ کہا, پہلے دو تین دفعہ آپ خود کہہ چکے نا, تو کہا ہاں سب معاف ہو جائے گا. اس میں فضیلت کس کی ہوئی؟ شہادت کی, کہ شہادت اتنا بڑا عمل ہے کہ سارے گناہ معاف ہوں گے. لیکن بعد میں جبرائیل نے آ کے ایڈ آن کروایا کہ نہیں, لیکن قرض نہیں معاف ہوگا. تو کیا پتہ چلا کہ شہادت کا مرتبہ اتنا بڑا کہ سارے گناہ معاف ہوں گے, لیکن قرض قباحت کہ وہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, امام بھی کہتے ہیں اس بارے میں باپ میں کہ باپ من قتل فی سبیل اللہ کفت خطایاہ الا الدین, کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اس کے قرض کے سوا تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. امام نبی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اس ارشاد مگر قرض یعنی اللہ دین میں یہ تنبیہ ہے. تنبیہ کس کو کہتے ہیں؟ وارننگ. کہ جہاد، شہادت اور اس طرح کے دیگر نیک اعمال حقوق اللہ کے متعلقہ گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن حقوق العباد سے متعلقہ گناہ معاف نہیں ہوتے. کیونکہ آپ بات سمجھیں، شہادت اللہ کے ساتھ معاملہ نا، قرض کس کا تعلق ہے؟ انسانوں کا. تو اللہ کے معاملے میں نیکی کی نا، تو بندوں کے معاملے سے چھوٹ نہیں مل سکتی. اب آپ اس کو امیجینیشن میں لائیں، آپ کہتے ہیں کہ شہادت کا کرتب ہے. روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ فوراً جنت میں دے. ایسی روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو جہنم سے نکالیں گے. سناؤ بھائی میری جہنم کیسی ملی؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ بڑی بری ہے تیری جہنم، بہت بری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو کہے گا میری یہ خواہش ہے کہ مجھے یہاں سے نکال دیا جائے اور میں واپس جاؤں اور اچھے کام کروں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو واپس آگ میں ڈال دو، اس کی یہ خواہش نہیں بری ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ جنت میں سے ان لوگوں میں سے بلائیں گے جس کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا. بلا کر کہیں گے سناؤ بھائی میری جنت کیسی ایسی لگی؟ تو کہیں گے اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت ہے. کہا جائے گا کوئی خواہش ہے؟ کہیں گے ایک خواہش ہے. کیا؟ اللہ تعالیٰ واپس دنیا میں بھیج. جو خوشی اور جو لطف اور لذت تیرے راستے میں جان کٹاتے ہوئے ملا تھا نا، اس کو جنت میں بھی مس کر رہے ہیں. یعنی واپس دنیا میں کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ کہ دوبارہ شہید ہو کے واپس آئیں، اتنا ملا. لیکن قرض اس سے بھی معاف نہیں ہے. لگ رہا ہے نا کہ یہ کانٹوں مرا راستہ ہے، اور پتہ نہیں کس کس کے لے لے کے بھولے ہوئے، پتہ نہیں کدھر کدھر کس کو دینا کس کا لینا. تو اس لیے معاملے کو سیدھا رکھنے کی ضرورت ہے. چوتھا نقصان کیا ہوگا قرض کی ادائیگی نہ کرنے کا؟ دخول جنت میں رکاوٹ ہوگی. تین احادیث ہیں اس میں، ترمذی، ماجہ اور ابن حبان روایتیں ہیں ان کی. یعنی ان آئمہ کرام نے بیان کیا حضرت صوبان سے، اللہ کے نبی فرمایا مم مات وہو بری من الکبری والغلولی والدینی دخل الجنہ. جو شخص تکبر، غنیمت میں خیانت اور قرض سے مبرف ہوا، نوٹ کریں بڑے بڑے گناہ ہیں نا، تکبر، مال غنیمت میں چوری کرنا، اس کے ساتھ قرض کو جوڑ دیا، اس سے اگر کوئی بری فوت ہوا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. حبان اس حدیث پر جو ٹاپک رکھتے ہیں، اس شخص کے جنت میں داخلے کے واجب ہونے کا ذکر، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور وہ قرض اور غنیمت خیانت سے پاک ہو. بات سمجھ گئے؟ شیخ مبارک پوری حدیث کی شرح لکھتے ہیں، اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھی جاتی ہے کہ بلا شبہ جو شخص فوت ہوا وہ ان تین باتوں سے نہ ہوا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ آخری جملہ ہائی لائٹ کر لیں. کیا سمجھ آیا؟ کہ قرض چھوٹی چیز نہیں ہے. اسی طرح امام ترمذی، ابن ماجہ، حاکم اور بغوی نے ابو ہریرہ سے روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو آپ نا عربی میں میرے ساتھ بھی پڑھیے اور اپنی بک میں ہائی لائٹ کیجیے گا، نفس المؤمن نفس المؤمنی معلقۃ بینہ حتی یقضى عنہ. مومن کی جان قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے. قرض سر پہ ہو نا تو میت جسم سے نکلتی ہے لیکن جان لٹکی رہتی ہے. معلق سمجھتے ہیں؟ ہینگنگ. نفس مومن کے معلق رہنا مراد ہے. اب یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں، اس کی شرح کیا ہے؟ مراد یہ کہ ادائیگی قرض تک اس کا جنت میں داخلہ روک دیا جاتا ہے، ویٹنگ لسٹ میں، یہاں تک کہ اگر وہ جامع شہادت بھی نوش کر لے تب بھی قرض کا واپس نہ کرنا اس کو جنت میں روکنے کا سبب بن جاتا ہے. اور اگلی حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہے. نسائی، حاکم اور بغوی میں روایت ہے محمد بن جہش سے، انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر اپنی ہتھیلی کو پیشانی پر رکھ دیا، پھر ارشاد فرمایا سبحان اللہ ما نزل من التشدید، ریب سے پاک ہیں کس قدر سختی نازل ہوئی ہے. ہم چپ رہے اور خوفزدہ ہو گئے، یعنی پوچھا بھی نہیں کہ کیا ہوا. دوسرے روز میں نے رسول اللہ سے دریافت کیا یا رسول اللہ ما حاضر تشدید الذی نزل، اے اللہ کے نبی نازل ہونے والی یہ سختی کیا تھی؟ اس وقت نہیں پوچھا، ادب دیکھیے، جرت نہیں تھی اور خوف زدہ کتنے ہو گئے. تو آپ نے فرمایا والذی نزلہ، وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لون رجلا قتل فی سبیل اللہ، اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، ثم احیا پھر زندہ کیا جائے، ثم قتل پھر قتل کیا جائے، ثم احیا پھر زندہ کیا جائے، ثم قتل پھر قتل کیا جائے، وعلیہ دین، اور اس کے ذمہ قرض ہو، ما دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. کب تک؟ हत्ता युक्दान हुदैनुहु, जब तक इसका कर्ज अदा ना किया जाए। 3 दफा शहीद होके कोई दुनिया से वापस चला जाए फिर भी कर्ज माफ नहीं होगा। लग रहा है ना मिटने वाला धब्बा कर्ज। कभी कभी स्टेन्स होते हैं, पानी से उतर जाते हैं, साबुन से उतर जाते हैं, कुछ में जो स्टेन रिमूवर डाले फिर भी नहीं उतरते। मुझे तो कर्ज कुछ ऐसा ही लग रहा है। सच बताएं कि आज हमारे माशरे में इसको इतना बड़ा समझते हैं? फिर दोहरा दूं कि सिर्फ कर्ज की बातें हैं, कर्ज के साथ कोई दूसरी कबाहत की बात तो भी आई? ये तो सिर्फ जेन्युइन कर्ज है। इसको वो कर्ज ना कहें जिसको दूसरे कह देते हैं कि ये भी जाए। यानी अभी तक लव सूद नहीं आया आपकी बुक में इस एंगल में। सिर्फ कर्ज की इतनी बात है तो सूद भरे कर्जों के साथ क्या होगा? उसके साथ जी के फिर क्या हो रहा है उन मरने के साथ? अल्लाह नोज दी बेस्ट। इस हदीस में अल्लाह के नबी ने इस हकीकत को वाजे फरमाया कि वाजिब जिमा कर्ज 3 दफा जामे शहादत नोश कर लेने वाले शख्स के लिए भी जन्नत में जाने की रुकावट बन जाता है। देखिए बोझ ना लाद के फिरे। मैं कहती हूँ जिंदगी एक बार मिली है, इसको आजाद फजाओं में जी के सोके आप दुनिया में आ जाएंगे, आप फील करेंगे कि असल जिंदगी है। आप देखिए आज जाहरी तौर पे कितनी आसूदगी है, खुशहाली है ना, घर गाड़ियां कोठियां बंगले। यानी इन सब चीजों को देखे तो शायद आज भी कुछ लोग हमारे मुल्कों में रहने वाले इन चीजों पर रश करें, लेकिन क्या दिलों में खुशी है, आपस में मोहब्बत है? वजह क्या कि अल्लाह जब एक चीज से मना कर देता है तो वो चीज हमें खुशी कहां दे सकती है। अब अगला थोड़ा सा टॉपिक पढ़ के इंशाल्लाह फिर आप में से भी किसी को मौका देते हैं कि चौथी बहस है अब इस पे कि कर्ज की वापसी के लिए कानूनी इकदाम क्या है। अभी तो हम इसको गुनाह सवाब पे लेके बैठे हुए हैं ना, दुनिया में सवाब आखिरत में फायदा, दुनिया में गुनाह सवाब, लेकिन लीगल एस्पेक्ट्स क्या है? क्योंकि ये बहुत अहम मसाइल है। बात अब हम लीगली पकड़े होते हैं किसी चीज में हमें पता ही नहीं होता। शरीयत इस्लामिया में कर्ज की अदायगी के लिए सिर्फ हुक्म और तरगीब और तरहीब पर इक्तफा नहीं किया गया। तरगीब क्या होती है? बद दिलाना, मोटिवेशन, और तरहीब डराना, वॉर्न करना। इक्तफा करना मीन ओनली यही नहीं किया गया। इक्तफा क्या हुआ? यानी इसी काफी नहीं समझा गया, बल्कि ऐसे कानूनी इकदाम भी तजवीज किए गए हैं जो कि मकरूज को अलमटोल और ताखीर से रोकने और कर्ज की वापसी को यकीनी बनाने में मौसर किरदार अदा करते हैं। इनमें से कुछ इकदाम मकरूज की शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं और कुछ इसके माली मामला पर गहरा असर छोड़ते हैं। यहाँ हम दो मुख्तलिफ उनवानों में बात करेंगे। पहला क्या है? मकरूज पर शख्सी असरात वाले कानूनी इकदामात, और फिर मकरूज पर माली असरात वाले कानून। शख्सी असरात क्या होते हैं? पर्सनैलिटी से मुतल्लिक, आइए देखते हैं। मकरूज पर शख्सी असरात वाले कानूनी इकदामात। इस्लामी शरीयत में कर्ज की अदायगी में ताखीर और कर्ज के अदा न करने की सूरत में शख्सी असरात वैसे कई कानूनी इकदामात हैं जो मकरूज को बर वक्त अदायगी पर मजबूर करने या कम से कम इसकी तरफ मायल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। इकदाम कहते हैं कदम, यानी एस्पेक्ट्स कह लीजिए। पहली बात यह कि जो शख्स इस तरह का है जो कर्ज नहीं देना चाहता, नहीं दे रहा, तो फांसी करार दिया जाएगा और उसकी गवाही कबूल नहीं होगी। करें जरा निकाह के गवाह लाइए जी, ये लड़की का मामू, ये लड़की का चचा, ये फुला, कुछ भी आते हैं ना आपस में, एकदम कहा जाता है इनके ऊपर कोई कर्ज तो नहीं जो इन्होंने नहीं दिया या नहीं देना, इनकी गवाही नहीं होगी, चले उठें किसी और को लाए। अंडरस्टैंड करें जी, फांसी करार दिया जाता है ऐसा शख्स। फिर दूसरी चीज, इज्जत का मुबाह होना, कैद डालना और सफर पर पाबंदी। आइए एक एक को देखते हैं। यानी ये बड़ी अहम बात है कि किसी कर्ज लिया तो उसको आपके ऊपर कितना ज्यादा हक हो जाता है कि आप उससे पूछे बगैर सफर भी नहीं कर सकते जी, आप कहाँ घूमते फिर रहेंगे। फासिक करार देना और गवाही का मुस्तरद होना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादे गरामी के दौलतमंद का कर्ज की वापसी में टालमटोल जुल्म है। इससे इस्तिंबात करते हुए, यानी इसे एक्सट्रैक्ट करते हुए, जमहूर उलमाए उम्मत ने यह तकरीर किया कि ऐसा शख्स फासिक करार पाता है और इस्लामी अदालतों में गवाही देने की अहलियत से महरूम कर दिया जाता है। यानी ऐसे शख्स की गवाही कहीं कबूल नहीं होगी। आप बताएं कोई गवाही देने के काबिल रह जाएगा फिर कबूल? क्योंकि ये झूठा है, दे सकता है, नहीं दे रहा, देने की नियत नहीं है, टाल रहा, मटोल कर रहा है। हाफिज इब्ने हजर कहते हैं हदीस में, ली तो लाल करने पर डांटा, ली तो लाल वही आगे पीछे करना। इस बारे में इख्तलाफ है, क्या ऐसा अमदन करना, अमदन कहते हैं नियत इरादे से, कबीरा गुना है या नहीं? यानी गुना तो है ये सब मानते हैं, किस दर्जे का गुना है, कबीरा कि सगीरा, ये पता करेंगे। जमहूर के नजदीक ऐसा करने वाला फासिक करार पा जाता है। और आपको तो फांसी कौन होता है, दीन की हदों से निकलने वाला, पढ़ चुके आप लोग। लेकिन क्या इस पर फिस्क और टाल मटोल से चिश्मा होता है या नहीं, यानी बस एक दफा टालने से कोई बन जाएगा या उसकी आदत बन गई है। तो इमाम नवी ने कहा कि हमारा मजहब यह है कि हुक्म फिस्क लगाने के लिए कई मरतबा ऐसा करना शर्त है, यानी जिसकी आदत बन जाए टाल मटोल की उसके लिए यह शर्त है। शरह मिनहाज में सुबकी ने इन पर रद्द करते हुए कहा हमारे मजहब का तकाजा है कि हुक्म फिस्क लगाने के लिए तकार शर्त नहीं। ये दूसरे आलिम है वो कहते हैं कि एक दफा भी टाल बटोल करने वाला फासिक बन जाएगा। इसलिए उन्होंने ये दलील दी है कि मुतालबे के बाद हक को अदा ना करना और इसकी वापसी में बहाना बनाना गसब की मानिंद है। गसब क्या, किसी की चीज को छीन लेना, जबरदस्ती छीन लेना, और गसब कबीरा गुनाह है। इसके अलावा नबी सल्लम के इसको जुल्म कहने से मालूम होता है कि ये कबीरा गुनाह है और किसी गुनाह कबीरा होने के लिए तकरार की शर्त नहीं। बात वाज है ना, कोई कह दे एक दफा कोई जिना कर ले तो इट्स ओके, बार बार करेगा तो कबीरा होगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर कौन सी बात वाजे है, एक दफा भी करे तो वो फासिक बनेगा। इज्जत का मुबाह होना क्या, मुबाह किसको कहते हैं, जायज इबाहत। कर्ज की वापसी में ली तो लाल करने से मकरूज अपनी इज्जत की हुरमत खो देता है। इमाम अहमद, अबू दाऊद, निसाई, इब्ने माजा और इब्ने हब्बान ने हजरत शरीत बिन औस सकफी से रिवायत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपने फरमाया का टाल मटोल करना इसकी इज्जत और सजा को हलाल कर देता है। क्या मतलब समझ आता है इसका, यानी इज्जत को टाल मटोल करना। इस पे इमाम बुखारी कहते हैं बाब क्या बांधते हैं कि हकदार के तकाजा करने के हक के मुतल्लिक बाब, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल की कि दौलतमंद का ली तो लाल इसकी इज्जत और सजा को हलाल कर देता है। और इब्ने हबान इस हदीस पर कहते हैं कि टालमटोल करने वाले के गनी होने की सूरत में टालमटोल की वजह से नफ्स और इज्जत में सजा का मुस्तहिक होने का बयान। इन सब ने जो बात की ना, इसका खुलासा क्या कि इज्जत के हलाल नहीं है। आपको भी नहीं समझ आ रहा होगा तो आइए देखिए इसके मुख्तलिफ अकवाल कि उसकी इज्जत हलाल है कैसे। इमाम सुफियान इसकी शरह में कहते हैं कर्ज ख्वाह को अपनी जुबान से इसको अजियत देने का हक है। समझ आई, कुरान क्या कहता है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सुई इल्ला मन ज़ुलिम, छठे पारे की पहली आयत है कि अल्लाह ताला ये पसंद नहीं करता कि किसी का बुरा जिक्र किया जाए। हाँ मगर मन ज़ुलिम, जिस पे जुल्म वो बोल सकता है। तो यहाँ जिस शख्स के थे देने थे उसने, उसको अल्लाह हक दे रहे हैं कि जिसने उसका कर्ज नहीं दिया वो उसकी बुराई बयान करे। तो जब बुराई बयान की तो इज्जत हलाल हो गई ना, यानी उसकी बेइज्जती कर सकता है। आप लिख लें अपने लिए, इज्जत के हलाल होने से मुराद है कि उसकी बेइज्जती कर सकता है, ये मुराद है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा था हजरतुल विदा के मौके पे कि तुम्हारी जान माल इज्जत एक दूसरे पे हराम है ना, तो इज्जत दूसरे को बेइज्जती नहीं आप कर सकते। आप किसी की राह चलते बेइज्जती कर दें ये मना है, लेकिन जिसने किसी का कर्ज लिया और वो जानबूझ के वापस नहीं करे तो वो उसकी बेइज्जती कर सकता है। और इसको लीगल टर्म्स में बोलें कि वो उसको नोटिस भेज सकता है, वो उसके लिए वारंट भेज सकता है, उसको गिरफ्तार कर सकता है। इमाम वकी कहते हैं इसके बारे में कि वो लोगों के रूबरू इसकी अदम अदायगी का तज़करा बतौर शिकवा कर सकता है। बाज़ लोग डर जाते हैं ना कि लोग बातें करेंगे तो फिर वो बातें कर सकते हैं। इमाम अब्दुल मुबारक इसके बारे में कहते हैं कि वो इसके साथ सख्त कलामी कर सकता है, यानी हार्शली उससे बात कर सकता है। इसी तरह लामा अली तनाफसी कहते हैं कि वो बतौर शिकवा इसकी अदम अदायगी का लोगों में तज़करा कर सकता है। इब्ने हजर इसकी शरह में कहते हैं कि इसको लोगों के रूबरू जिक्र करना जायज है। और शरफुद्दीन अजीम आबादी इसके बारे में लिखते हैं कि मानी है कि जब दौलतमंद कर्ज की वापसी में देर करे तो कर्ज ख्वाह के लिए जायज है कि इसके साथ इसकी बेइज्जती और बेहुरमती में शिद्दत का रवैया अख्तियार करे। इसी तरह काजी को, काजी कौन होता है, जज, इसको भी तादीब की गरज से, तादीब के अदब सिखाने, तादीब अदब सिखाने की गरज से इसके साथ सख्त कलामी करने और इसको कैद करने का हक है, क्योंकि जालिम है और जुल्म हराम है अगरचे वो थोड़ी ही हो। आपको यह इस्लाम सख्त तो नहीं लग रहा, सख्त तो नहीं लग रहा, अदल के साथ है इस्लाम का कानून। आप देखिए वर्दियों में हमेशा बुरे लोगों को साइड मिल जाए, हमारे यहाँ कहते नहीं ये मकरूज है ये अच्छा ही होगा, ये कर्ज जिसने दिया ये क्यों इस पे सख्ती कर रहा है। लेकिन देखिए जब दोनों तरफ से बात नहीं होती तो फिर सारा सिस्टम बिगड़ता। इसी तरह शेख शुएब अरनाउत कहते हैं नबी सल्लम ने इसकी इज्जत के हलाल होने से ये बात ली है कि कर्ज ख्वाह को इसकी मलामत और मजम्मत करने और अदायगी पूरे होने के जिक्र का हक हासिल है। तो सारी बातों में फिर ये बात साबित हो गई कि तवंगरी यानी दौलतमंदी के बावजूद कर्ज की वापसी में टालमटोल करने वाले की तशहीर, तशहीर मीन उसको पब्लिसाइज करना, शोहरत करना, जदीद ज़राए अबलाग यानी मीडिया में भी की जाए। अब टीवी में ये इश्तिहार देने शुरू कर दें, फलाने ने मेरा कर्ज वापस नहीं किया, फेसबुक पर डाल दिया जाए, और ये तदबीरें इसको लीतो लाल की बजाय अदायगी पर मुअसर साबित होंगी। चलिए, ये तो जुबानी कलामी बेइज्जती थी, अगली बात है कैद में भी डाला जा सकता है इसको। इस हदीस में ये बात भी है कि दौलतमंद शख्स का कर्ज की अदायगी में टाल मटोल करना इसकी सजा को हलाल करता है। उलमाए हदीस ने सजा को हलाल करने के बारे में जो बात कही उसके चंद अकवाल, इमाम बहकी कहते हैं मुराद के कि इसकी सजा यह है कि इसको कैद में बंद किया जाए। आप देख रहे हैं ना हदीस के एक एक लफ्ज़ बहस होती है, पीछे हुई थी इज्जत पे और अब यहां बात हो रही है सजा पे। इमाम कुबतहु हब्सुहु, इसको कैद करना इसकी सजा है, यानी ऐसे शख्स को कैद कराया जा सकता है। फिर अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं इसकी सजा यह कि इसको कर्ज ख्वाह के लिए कैद कर दिया जाए। इमाम अली तनाफशी कहते हैं कि इसकी सजा इसको कैद में डालना है। और हाफिज इब्ने हजर कहते हैं इस हदीस के बारे में, हदीस से अदायगी की कुदरत रखने वाले मकरूज को अदब सिखाने और इस पर सख्ती की से कैद करने का हलाल होना, मशरूयत क्या होता है, शरण हलाल है, मशरूयत पर इस्तदल है। खुलासा क्या है कि ऐसे शख्स को कैद भी किया जा सकता है, उसकी बेइज्जती भी की जा सकती है और शरण ये हलाल है। हजरत शैब अरनाउत कहते हैं कि नबी सल्लम का इसकी सजा से मकसूद को कैद में डालना है। और काजी शुरैख कर्ज के वापस ना करने पर मकरूज को कैद में बंद करने का करते थे। कितने बड़े काजी गुजरे अपने दौर के। इमाम इब्ने अभी शैबा इब्ने सीरीन से रिवायत करते हैं कि शुरैख कर्ज की अदम अदायगी की बिना पर कैद करने का हुक्म देते थे। तो आज अगर ये निज़ाम नाफिज हो जाए तो सारे ही मकरूज हैं वो जेल में चले जाएं तो ठीक हो जाएंगे। या आज हमारे मुल्कों में कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, किसी से कर्ज वापस लेना पड़े ना कहते हैं बदमाश साथ लेके जाओ, फलां ग्रुप को ले जाओ, उनके लोगों से जाके घर खाली कराओ, हम तो नहीं करा सकते, ये हालात हो गए हैं। तो फिर उस मुल्क में जलजिले ना आए तो और क्या है, उधर इतनी बेबसी ना हो तो और क्या हो, हम खुद अल्लाह के हुक्मों को तोड़ते हैं। देखिए इस्लाम फेयर दीन है, हम एक दफ़ा दूसरे की तरफ झुक जाते हैं, गरीबों से झुक जाएंगे, या जो कानून तोड़ते हैं हम उनको बहुत साइड देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आप इवन रहिए, फिर देखिए अल्लाह ताला कितनी रहमतें नाजिल करते हैं। इसी तरह इमाम शाबी भी अदम अदायगी की सूरत में कैद करने को ज़रूरी करार देते हैं कि ज़रूर कैद किया जाए इसको। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक और इमाम इब्ने अभी शैबा ने कहा, जब मैं कर्ज की अदम अदायगी की सूरत में कैद करूँ तो खुद मैंने इसके हक को ज़ाया कर दिया, यानी अल्लाह ने हक दिया है कि ऐसे बंदे को कैद किया जाए। इमाम शाबी की निगाह में अदम अदायगी की सूरत में कैद करने की अहमियत का अंदाजा इस बात से होता है कि कहते हैं कि कर्ज की अदम अदायगी की बिना पर कैद करना जिंदगी है। कैसे भाई, ये तो मुझे कुरान की वही आयत याद आ रही है कि इन्ना लकुम फिल कसासी हयातुन या उलिल अबसार, ये अकल वालों तुम्हारे लिए कसास में जिंदगी है। वो कैसे होगा भला, इसकी वजह क्या है, फिर बाकी लोग नहीं ऐसा करेंगे। एक दफा जब ऐसी सजाएं मिलने लग जाएंगी तो उसके बाद फिर लोग क्या करेंगे, रुक जाएंगे इस बुरे फेल से। इसी तरह काजी इब्ने अभी याला और दीगर कुजा, कुजा काजी की जमा, कर्ज की अदम अदायगी की हालत में मकरूज को कैद में डालने का हुक्म देते हैं। इमाम अभी शैबा ने वकी का बयान किया, हमने अपने कुजा इब्ने अभी लैला और मैं कोई भी ऐसा नहीं देखा जो कर्ज की अदम अदायगी की वजह से कैद ना करता हो, यानी ये कैद करते थे। तो फिर कुछ लोग कहते हैं ना इस्लामी सजाएं बड़ी इंसानियत सोज हैं, तो ये लोग ऐसे गलत काम करते हैं वो क्या करते हैं, वो कोई अच्छा काम करते हैं। वो जैसे किसी ने शायद अल्लामा इकबाल के बारे में आता है ना कि किसी जगह आए वेस्ट में, लाइक आप कह लीजिए यूरोप आए थे, आपको पता ही वो लंदन से उनका कुछ था ताल्लुक पढ़ने पढ़ाने का, तो किसी नॉन मुस्लिम ने आकर उनको टॉन्ट किया, कहने लगे इस्लाम कितना गैर मुहज़्ज़बाना दीन है कि चोरी पर हाथ कटवा देता है ना चोर की सजा। तो उन्होंने जवाब में कहा, आपके ख्याल में चोर कोई बड़ा मुहज़्ज़ब शख्स होता है, यानी आप चोर की हिमायत कर रहे हैं और इस्लाम को बुरा कह रहे हैं। तो जब ऐसी सजाएं मिलती हैं तो लोग फिर उस चीज़ पर रहते हैं। आखिरी टॉपिक हमारी आज की नशिस्त का छोटा सा कि तंग दस्त मकरूज को कैद में डालना, इसके बारे में दो मुख्तलिफ राय हैं। उलमाए उम्मत की तंग दस्त और मुफलिस मकरूज को अदम अदायगी की बिना पर कैद में डालने के लिए जो राय हैं, एक राय अदम अदायगी हालत में इसको भी कैद में डालने की है और दूसरी राय के मुताबिक ये सजा सिर्फ दौलतमंद मकसद के लिए। बात समझ रहे हैं, एक तो है कि हर एक को डाल दिया जाएगा, दूसरा वो कि जो दे सकता है और नहीं दे रहा। इमाम खत्ताबी इसके बारे में कहते हैं, اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ تنگ دست پر قید نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دولت مندی کی صورت میں قید کو جائز قرار دیا، اور مفلس کے ہاتھوں تونگری نہیں، اس لیے اس پر قید نہیں ہے. اس بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے. شریخ دولت مند اور مفلس دونوں کو قید کرنے کے حامی تھے، اور یہی نقطہ نظر اصحاب رائے کا ہے. مالک اس بارے میں فرماتے ہیں کہ تنگ دست پر قید نہیں، اس کا حق تو یہ ہے کہ مہلت دی جائے. شافعی کا مذہب یہ ہے کہ جو ظاہری طور پر تنگ دست ہو اس کو قید نہ کیا جائے، اور جو تونگر نظر آئے اس کو قرض واپس نہ کرنے کی صورت میں قید میں ڈال دیا جائے. اب دونوں کو جمع کر لیں تو یہ مفسر کہتے ہیں کہ میرے محدود فہم کے مطابق حدیث شریف سے امام خطابی کا استدلال کہ تنگ دست کو قید نہ کیا جائے درست معلوم ہوتا ہے. یہی رائے حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. حسن بصری بھی اسی پر فیصلہ دیتے تھے. امام بہکی نے ابو جعفر سے روایت کی کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قید تو حقیقی صورتحال سے امام کی آگہی تک ہے، اس کے بعد قید میں ڈالنا ظلم ہے. یعنی اس کی کنڈیشن کیا ہے، سرکمسٹانسز دیکھے جائیں گے. مراد یہ کہ ادائیگی نہ کرنے والے مقروض کو اس کی حقیقی صورتحال سمجھنے کی غرض سے قید کیا جائے گا. اگر معلوم ہو جائے کہ وہ تنگ دست ہے تو پھر اس قید سے نکال لیا جائے. ایسی حالت میں اس کو قید رکھنا حضرت علی کے نزدیک ظلم ہے، اور ان کا ادائیگی نہ کرنے والے مقروضوں کے ساتھ معاملہ بھی ان کے اسی فرمان کے متعلق تھا. تو بہرحال امام بہکی اس روایت پر جو باب لاتے ہیں وہ کیا ہے، عدم ادائیگی کے، یعنی ادائیگی نہ کرنے کے الزام کی وجہ سے جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی تنگ دستی کے معلوم ہونے اور اس کے بارے میں حلف اٹھانے کی بنا پر چھوڑ دیا جائے گا. بات واضح. حضرت ابو ہریرہ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، امام ابن شیبہ نے ابی المحزم سے روایت نقل کی کہ ایک شخص نے اپنے مقروض کو ہریرہ کے پاس لے جا کر پیش کیا اور عرض کیا اس کو قید کروا دیجئے. انہوں نے فرمایا کوئی مال ہے کہ اس قرض کے عوض اس سے لے لوں؟ اس نے جواب دیا نہیں. تو انہوں نے کہا تجھے اس کی کسی جائز میں کہ تیرے قرض کی رقم کاٹ لوں؟ اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے فرمایا فما تریدو، پھر تم کیا چاہتے ہو؟ مراد کہ دے نہیں سکتا، نہ مال ہے نہ جائیداد ہے. اس نے کہا احبسو، اس کو قید میں ڈال دیجئے. انہوں نے فرمایا لا، نہیں، بلکہ میں تو اس کو چھوڑتا ہوں تاکہ وہ تیرے قرض کی ادائیگی اور خود اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کمائے. جیل میں جائے گا تو کمائے گا نہیں نا. کہا نہیں، اس کو آزاد کرو، جاؤ کمائے پھر دے. حسن بصری کے بارے میں امام ابن ابی شیبہ سے روایت کیا کہ حسن نے بھی ابو ہریرہ والا فیصلہ کیا. تو ساری بات کا خلاصہ کہ مالدار مقروض کے ٹال مٹول کی وجہ سے اسلامی عدالت میں اس کے قید میں ڈالے جانے کا حکم ہوگا تاکہ وہ فوری طور پر اس کی ادائیگی کر سکے، اور اس کو قید نہیں کیا جائے گا جبکہ پتہ چل جائے گا. سفر بھی نہیں کر سکتا. یعنی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ لے کر آپ یہاں سے اٹھیے کہ ایسا قرض جس نے کسی کا لیا ہوا ہے وہ سفر نہیں کر سکتا. بس سوچئے گا کہ اچھا سفر بھی نہیں کر سکتے تو پھر قرض کتنی بڑی بات ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.